HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original. वृंदावन धाम का नाम सुनते ही मन श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से भर उठता है। वृंदावन में ही श्री राधा रानी और कृष्ण ने संसार को प्रेम रस समझाने के लिए अनेकों लीलाएं रची हैं। 84 कोस में फैली ब्रजभूमि की महिमा ही जगत से न्यारी है। यहाँ हर दिन असंख्य भक्त भक्ति लाभ लेने के लिए पहुँचते हैं। ये सोचने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन ही क्यों चुना? उनके जन्म से पहले यहाँ किसकी उपासना होती होगी? श्री कृष्ण की कुल देवी कौन होंगी? मथुरा वृंदावन वासी किसको पूजते होंगे? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जन्म से भी युगों पहले से ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माने धारण किए वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे। आज मैं आपको ले चलूंगी पवित्र धाम वृंदावन, जहाँ राधा बाग में केशव आश्रम के पीठ स्थान में स्थित है कात्यायनी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर देवी सती के केश गिरने की मान्यता है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है और वो यहाँ अपने भैरव भूतेश के साथ विराजती हैं। यहाँ शक्ति को उमा और भैरव को कृष्णनाथ भी कहा जाता है। ये शक्तिपीठ वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर के पास ही स्थित है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ वो अपने पुत्र गणेश को भी अपने साथ रखती हैं। इनकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सतयुग से स्थापित इस शक्तिपीठ का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, आर्य शास्त्र, आद्य स्त्रोत्र, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत में मिलता है। दुर्गा सप्तशती में देवी के अवतरित होने का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। देवी माँ कहती हैं, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही माँ यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। जब कंस ने इनका वध करना चाहा, तब इन्होंने अपने विराट प्रकाश रूप में परिवर्तित होकर कंस से कहा, तेरा काल इस धरती पर जन्म ले चुका है। देवऋषि श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में उल्लेख किया है, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस श्लोक में गोपियां माँ कात्यायनी से प्रार्थना कर रही हैं, हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ, हम आपका अर्चन और वंदन करते हैं। पति का अर्थ होता है रक्षक और संरक्षक, जैसे सेनापति, राष्ट्रपति। यहाँ भी पति शब्द का अर्थ है संरक्षक। गोपियां कहती हैं कि हे देवी, श्री कृष्ण को हमारा संरक्षक बनाओ। श्रीमद् भागवत में भगवती कात्यायनी के पूजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सुंदर वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि गोपियों के तप के कारण ही श्री कृष्ण ने वृंदावन को चुना और वो इस स्थान को कभी छोड़कर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये स्थान आज भी उनके भक्तों की तपोभूमि है और सदा रहेगी। कहते हैं, जहाँ भक्त हैं वही भगवान हैं। कुछ भक्त ऐसा भी मानते हैं कि राधा रानी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए यहाँ दुर्गा माँ की उपासना की थी, इसलिए श्री कृष्ण सबके होते हुए भी सिर्फ राधा रानी के रहे। आज भी सब राधा कृष्ण ही कहते हैं। माँ कात्यायनी श्री कृष्ण की कुल देवी थी। कंस वध से पहले श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर माँ की उपासना कर उनसे विजय का वरदान मांगा था। इसीलिए इस शक्तिपीठ की महिमा बहुत अद्भुत है। यहाँ हर मनोकामना सिद्ध होती है। देवी कात्यायनी की उपासना, व्रत और दर्शन करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वर मिलता है। कात्यायनी नामक ये महाव्रत पूरे मार्गशीर्ष या अगहन के मास में होता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये लगभग नवंबर का महीना होता है। ये व्रत एक महीने तक चलता है, जिसमें माँ कात्यायनी को चंदन, पुष्प और सुगंधित द्रव्य का चढ़ावा समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि जैसे देवी कात्यायनी मंदिर में प्रतिष्ठित देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमा भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देती है, उन्हें देखने के बाद व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उसी प्रकार उनका व्रत रखने वाला भक्त जिसको जीवन साथी के रूप में चाहता है वो भी उनसे सम्मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदर महिमा है माँ कात्यायनी शक्तिपीठ की। लोग यहाँ मन्नत के धागे बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर जोड़े के साथ आकर माता के दर्शन करते हैं और चुनरी चढ़ाते हैं। ये मंदिर 12 महीने दर्शनों के लिए खुला रहता है। सर्दियों और गर्मियों में यहाँ दर्शनों का समय अलग अलग होता है। यहाँ आने का सबसे अनुकूल मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक है। उन दिनों यहाँ का तापमान अनुकूल रहता है, बाकी दिनों में यहाँ गर्मी रहती है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप नवंबर माह में कात्यायनी पूजा के समय यहाँ आकर दर्शन करें। उन दिनों यहाँ का उल्लास अलग ही होता है। आप नवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के अवसर पर भी यहाँ दर्शनों के लिए आ सकते हैं। उन दिनों भी भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की यहाँ विशेष पूजा और दर्शन होते हैं। नई दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में रंगजी के मंदिर के बिल्कुल पास राधा बाग के केशव आश्रम में स्थित है कात्यायनी देवी शक्तिपीठ, जिसे उमा देवी सिद्धपीठ भी कहा जाता है। याद रहे, सभी शक्तिपीठ सिद्धपीठ भी हैं, लेकिन सभी सिद्धपीठ शक्तिपीठ नहीं होते। ये स्थान काफी बड़े परिसर में फैला हुआ है। अति प्राचीन मंदिर होने के कारण समय समय पर इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर का पुनः निर्माण स्वामी केशवानंद द्वारा सन 1923 को किया गया। इसी दिन कोलकाता से लाकर यहाँ माँ कात्यायनी की दिव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा स्वयं माँ ने स्वप्न में आकर इनको दी थी। मूर्ति कैसी और कहाँ बनवानी है, ये सब भी देवी माँ ने ही उनको बताया था। इस परिसर में करीब 12 बीघा में मंदिर है, 5 बीघा में बाग है और करीब 15 बीघा में खेती होती है। मंदिर पहुंचते ही बाहर प्रसाद की दुकानें हैं। यहां से आप प्रसाद, नारियल और माता की चुनरी खरीद सकते हैं। फिर मंदिर का बड़ा सा प्रवेश द्वार है, इससे होते हुए आप एक विशाल प्रांगण में पहुंच जाते हैं। ये पूरा मंदिर और प्रांगण सफेद मार्बल से बना हुआ है और बहुत ही भव्य है। बड़े बड़े काले मार्बल के स्तंभों पर ये टिका हुआ है। प्रांगण में एक और 12 द्वारी है, जिसमें माँ कात्यायनी की प्रतिमा है, और दूसरी ओर एक विशाल यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में नित्य चंडी पाठ व अन्य मंत्रों के पाठ होते रहते हैं। इस स्थान पर पहुँचते ही देवी के वैदिक मंत्रों की ध्वनि को सुनते ही रोम रोम रोमांचित हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार हो रहा है। ये स्थान यज्ञ की सुगंध से महकता रहता है। इस विशाल मंदिर प्रांगण में सिद्ध गणेश मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, आदि शंकराचार्य मंदिर, सरस्वती मंदिर और स्वामी केशवानंद महाराज जी की समाधि भी है। देवी माँ की प्रतिमा अलौकिक है। माँ के हाथों में उनकी अद्भुत तलवार है, जिसका नाम उच्चावल चंद्रहास है। यहाँ उसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कहते हैं इसकी पूजा से मनुष्य समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। माँ की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर हैं। जो भी उनको देखता है सम्मोहित हो जाता है। इसलिए जो एक बार उनके दर्शन कर लेता है वो बार बार लौटकर उनके दर्शनों के लिए आता है। इस स्थान की महिमा श्री सिद्ध गणेश मंदिर के कारण और भी बढ़ जाती है। इसका इतिहास अत्यंत विचित्र और रोचक है। ये बात उन दिनों की है जब भारत पर ब्रिटिश राज्य था और यहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो चुका था। कलकत्ता में एक इंश्योरेंस कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम कर रहे एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी श्रीमती यूल ने इंग्लैंड जाते हुए जयपुर से एक गणपति महाराज की मूर्ति खरीदी। उन्होंने इंग्लैंड में अपने घर की बैठक में गणपति जी की प्रतिमा सजा दी। एक दिन श्रीमती यूल के घर भोज हुआ तथा उनके मित्रगणों ने गणेश जी की प्रतिमा को देखकर उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये हिंदुओं के देवता हैं। उनके मित्रों ने गणेश जी की मूर्ति को देखकर बहुत मजाक बनाया। उन्होंने उसे बीच मेज पर रख दिया और तरह तरह से उसका उपहास करना प्रारंभ किया। किसी ने गणेश जी के मुख के पास चम्मच लाकर पूछा कि इनका मुंह कहाँ है। इस तरह वो बहुत देर तक उनका उपहास करते रहे। जब भोज समाप्त हो गया तब रात्रि में श्रीमती यूल की पुत्री को बहुत तेज बुखार हो गया। उस बच्ची को स्वप्न में क्रोधित गणपति दिखने लगे। डॉक्टरों ने सोचा कि वो विस्मृति में ऐसा कह रही है, परंतु जब रात दिन वो यही दोहराती रही कि मुझे क्रोधित गणपति दिख रहे हैं, और वो अत्यंत भयभीत हो गई। तब श्रीमती यूल ने ये सब वृत्तांत अपने पति को कलकत्ता लिखकर भेजा। उनकी पुत्री को किसी भी औषधि से कोई लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन यूल ने स्वप्न में देखा कि वो अपने बाग के अतिथि गृह में बैठी है। सूर्यास्त हो रहा है। अचानक एक नम्र पुरुष जिसके घुंघराले बाल, मशाल से जलती आंख, हाथ में भाला लिए वृषभ पर सवार बढ़ते हुए अंधकार से उसकी ओर आ रहा है और वो कह रहा है, मेरे पुत्र गणेश को तत्काल भारत भेज दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दूंगा। वो अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी और दूसरे ही दिन प्रातः उसने उस मूर्ति को अपने पति के पास भारत पार्सल कर दिया। उनके पति ने वो मूर्ति अपने अधीन कार्यरत केदार बाबू को दे दी। वो गणेश जी को वहां से अपने घर ले गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। इधर वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी महाराज कात्यायनी देवी की पंचायतन पूजन विधि से प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म की 5 प्रमुख मूर्तियों का प्रबंध कर रहे थे। श्री कात्यायनी देवी की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति कलकत्ता में तैयार हो रही थी तथा भैरव भूतेश की मूर्ति जयपुर में बनाई गई थी। स्वामी जी गणेश जी की प्रतिमा के विषय में विचार कर रहे थे तब उन्हें माँ ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि एक सिद्ध गणेश कलकत्ता में केदार बाबू के घर में है। जब तुम कलकत्ता से प्रतिमा लाओगे तब मेरे साथ मेरे पुत्र को भी ले आना। कुछ समय बाद जब श्री केशवानंद जी कात्यायनी माँ की अष्ट धातु की मूर्ति लेने के लिए कलकत्ता गए तब केदार बाबू ने उनके पास आकर कहा, गुरुदेव मैं आपके पास वृंदावन आने का ही विचार कर रहा था। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से एक गणेश जी की प्रतिमा है। प्रतिदिन रात्रि में स्वप्न में आकर वो मुझसे कहते हैं कि जब श्री कात्यायनी माँ की मूर्ति वृंदावन जाएगी तो मुझे भी वहाँ भेज देना, कृपया आप वो मूर्ति स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वो मूर्ति स्टेशन पर ले आना। जब माँ जाएगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ जाएगा। इस प्रकार वो सिद्ध गणेश स्वयं अपनी माँ के साथ श्री कात्यायनी पीठ में आए और प्रतिष्ठित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी स्थापना के बाद ये स्थान चमत्कारी हो गया। यहाँ तरह तरह के चमत्कार हुए। यहाँ देवी माँ भोलेनाथ के साथ सिद्ध गणेश का वास होने से यहाँ हर सिद्धि सिद्ध होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। तो चलिए, ये तो हुई माँ कात्यायनी और सिद्ध गणेश की स्थापना की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप भी माँ के दर्शनों के लिए यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पर वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग किसी भी तरह से आसानी से पहुँचा जा सकता है। वृंदावन पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से टैक्सी लेकर 2.5 घंटे में वृंदावन पहुँचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा है, जो वृंदावन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से वृंदावन तक ऑटो और टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। वृंदावन पर बस अड्डा है, जहाँ से देश के बड़े बड़े नगरों जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा और कानपुर के लिए भी सीधी बस सेवा उपलब्ध है। वृंदावन शहर के लिए विभिन्न नगरों से प्राइवेट एयर कंडीशन बसें भी संचालित होती हैं। मथुरा और वृंदावन में हर स्तर की रहने की व्यवस्था आसानी से मिल जाती है। यहाँ होटल, आश्रम, मठ, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस एवं टूरिस्ट लॉजेस भी उपलब्ध हैं। यहाँ 500 रुपए से लेकर किराए शुरू होते हैं। कुछ आश्रम व मठों में निशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से बैकपैक कीजिए और पहुंच जाइए वृंदावन धाम। यहाँ आने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग, पैसों और तैयारी की जरूरत नहीं है। किसी भी वीकेंड या 2 दिन की छुट्टी में आकर आप इस स्थान का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आकर यहाँ की कचौड़ी, सब्जी, समोसे, जलेबी, कुल्हड़ वाली लस्सी और भी अन्य मिठाइयाँ खानी मत भूलिएगा। साथ ही आप श्री बांके बिहारी मंदिर, आशेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा रानी का महल बरसाना, इस्कॉन, प्रेम मंदिर आदि के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। अगले एपिसोड में हम चलेंगे उत्तराखंड के रुड़की शहर में, जहां स्थित है माँ चूड़ामणि शक्तिपीठ, जहां देवी माँ का चूड़ामणि गिरा था। लेकिन वहां अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्तों को करना पड़ता है एक अपराध। कौन सा अपराध, ये जानने के लिए सुनते रहिए 51 शक्तिपीठ विद निष्ठा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कहीं सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
This was an HT Smartcast original.
HT Smartcast.